अध्याय छोटे संवाद गहरी सच्चाइयां। कमरे में धीमी रोशनी थी। हल्की नीली पर्दों के पीछे से आती धूप अब मध्यम हो चुकी थी और शाम की उदासी हर कोने में पसर गई थी। कमरे की सजावट में पुराने जमाने की झलक थी। लकड़ी की अलमारी, पीतल की मूर्तियां और दीवार पर टंगी अखिल के बचपन की तस्वीरें। उस तस्वीर को देखकर कोई भी कह सकता था, ये बच्चा कभी अपनी माँ की आंखों का तारा रहा होगा। अखिल की माँ सुमित्रा देवी खामोशी से खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी थीं। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी वो चमक थी जो अनुभव और संघर्षों से पैदा होती है। सामने मेज पर आधा छूटा हुआ तुलसी वाला पानी रखा था, जिसे उन्होंने जाने कब से छुआ तक नहीं। दरवाजा हल्के से खटका। शालिनी सिर झुकाए अंदर आई। उसके कदम धीरे धीरे चलते हुए कमरे में प्रवेश कर गए, जैसे वो कोई अजनबी जमीन पर चल रही हो। आ जाओ, सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा। शालिनी ने धीरे से कुर्सी खींची और उनके सामने बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही। सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी किसी भारी पहाड़ी नदी की तरह सुनाई दे रही थी। सुमित्रा देवी ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। तुम जानती हो शालिनी, उन्होंने कहना शुरू किया, जब किसी खानदान का नाम उसकी जुबान से ज्यादा उसके कर्मों में दिखता है, तब वो नाम पीढ़ियों तक गर्व से दोहराया जाता है। शालिनी की आंखें उठीं। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अखिल, सुमित्रा देवी का स्वर थोड़ा भारी हुआ, उसने जो किया उससे सिर्फ हमारे घर की दीवारें नहीं हिली, लोगों का भरोसा भी दरक गया। शालिनी ने उनकी आंखों में देखा, वहां आंसू नहीं थे, पर उस भाव की गहराई वैसी थी जैसे कोई वर्षों पुरानी पीड़ा बिना बोले चुपचाप रिस रही हो। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, ये उम्मीद नहीं की थी कि वो, उन्होंने रुककर एक लंबी सांस ली, कि वो हमारे नाम पर मिट्टी डाल देगा। शालिनी ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर उनकी हथेली थामी। आंटी, इंसान की परख सबसे मुश्किल होती है। हम सब अपनी अपनी तरह लड़ रहे होते हैं, कोई भीतर से टूट रहा होता है, कोई बाहर से। सुमित्रा देवी ने उसकी ओर देखा, एक क्षण को जैसे उन्हें उसकी बातों में कोई शांति मिल गई हो। लेकिन शालिनी, वो फिर बोली, क्या ये ठीक है कि परिवार का लड़का, जिसका हर काम हर किसी की नज़रों में होता है, वो ही रास्ता भटक जाए? नहीं, ये ठीक नहीं है, शालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, पर शायद उसके भीतर कुछ ऐसा टूटा होगा जो उसने किसी को बताया ही नहीं। हम हर बात की तह तक तो नहीं पहुंच पाते, पर शायद अब वक्त है कि हम सिर्फ गलती नहीं, वजह भी समझें। कमरे में फिर एक ठहराव आया। सुमित्रा देवी अब कुर्सी से उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर देखती रहीं, जैसे पुराने दिन फिर से आंखों में उतर आए हों। जब अखिल छोटा था, उन्होंने पीछे बिना देखे कहना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती थी। वो हमेशा पूछता था, माँ, क्या मैं कभी अपने दादाजी की तरह बड़ा आदमी बन पाऊंगा? शालिनी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, वो मुस्कान जो कड़वाहट के बीच उम्मीद का स्वाद देती है। उसने भी बड़े बनने की कोशिश की होगी आंटी, शायद सही रास्ता नहीं मिला, शालिनी ने कहा। रास्ता? सुमित्रा देवी मुड़ी। रास्ता हर किसी को मिलता है शालिनी, फर्क ये होता है कि कोई कांटों में चलकर भी सीधा जाता है और कोई फूलों में बिछे रास्ते पर भी बहक जाता है। उनका स्वर अब अधिक तीव्र नहीं था, लेकिन उसमें कसक थी, एक माँ की कसक। शालिनी ने उनके पास जाकर खड़े होकर कहा, आपका गुस्सा जायज़ है, पर अभी हमें गुस्से से ज्यादा जरूरत है समझदारी की। अखिल अकेला नहीं है, वो इस समय खुद भी टूट चुका होगा। सुमित्रा देवी की आंखों में नमी थी। उन्होंने शालिनी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें अब भी उस पर भरोसा है? शालिनी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे खुद पर भरोसा है आंटी, और उस भरोसे में वो भी आता है। कमरे में मौन पसर गया। बाहर कहीं दूर किसी पंछी की आवाज़ आई। सुमित्रा देवी ने हाथ थाम लिया उसका। तुम्हारे जैसे लोग ही रिश्तों की नींव को बचा पाते हैं शालिनी। आप चिंता मत कीजिए, शालिनी ने हल्के से कहा, सब ठीक हो जाएगा, शायद अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे पुराने जख्म सूखते हैं, वैसे ही ये वक्त भी कट जाएगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे? सुमित्रा देवी की आवाज़ में फिर वही चिंता लौट आई थी। लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, हमें उन्हें वो दिखाना है जो हम सच में हैं। हम टूटा हुआ परिवार नहीं है आंटी, हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित्रा देवी ने अपनी उंगलियां धीरे धीरे साड़ी के पल्लू में मरोड़ते हुए कहा, मैं डरती हूँ शालिनी, डरती हूँ कि कहीं अखिल का अंधेरा हम सबको न निकल जाए। शालिनी ने उनकी ओर झुककर कहा, अगर अंधेरे से डरेंगे तो रोशनी कैसे जलाएंगी आंटी? मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ मैं इस घर को फिर से जोड़ने की कोशिश करती रहूंगी, आप अकेली नहीं है। ये शब्द कमरे की हवा में ठहर गए। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन कमरे के भीतर एक धीमा गर्म उजाला आ चुका था। सुमित्रा देवी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से शालिनी के सिर पर हाथ फेरा, जैसे सालों की थकी हुई आत्मा को किसी ने सहारा दे दिया हो। तुम मेरी बहू नहीं हो शालिनी, उन्होंने कहा, तुम इस घर की असली बेटी हो। शालिनी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो आंसू किसी दर्द के नहीं थे, बल्कि उस अपनत्व के थे जो अब तक उसे सिर्फ अधूरे रूप में मिला था। सामने पड़ी अखिल की तस्वीर अब भी वही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सवाल थे, क्या मैं फिर से घर लौट पाऊंगा? और उस सवाल का जवाब शायद शालिनी ने दे दिया था, हाँ, अगर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो तो तुम कभी खो नहीं सकते। रिश्तों का भार, प्रेम का उजाला। कमरे में समय ठहर गया था। बाहर का अंधेरा अब खिड़की के कांच पर दस्तक देने लगा था, लेकिन भीतर एक हल्की सी गर्माहट थी जो ना तो किसी दीपक से निकली थी ना ही किसी हीटर से। वो शालिनी की बातों से जन्मी थी, जिसने सुमित्रा देवी की थकी आत्मा को थोड़ी देर के लिए सहारा दे दिया था। वे दोनों अब खिड़की के पास खड़ी थीं। सुमित्रा देवी की उंगलियां अब भी साड़ी के पल्लू में लिपटी थीं, जैसे कोई अंदरूनी घबराहट उनके जहन को जकड़ रही हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने शालिनी की ओर देखा। शालिनी, उनका स्वर बेहद धीमा और डगमगाता हुआ था, क्या तुम अखिल से रिश्ता तोड़ दोगी? शालिनी चौंकी नहीं, लेकिन उसकी सांस हल्की सी थमी। उसने सुमित्रा देवी की आंखों में देखा, वहां सवाल कम, डर ज्यादा था। वो वही डर था जो एक माँ को तब होता है जब वो जानती है कि उसका बेटा गलत राह पर चला गया है और शायद अब कोई उसके साथ नहीं रहेगा। शालिनी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप मुझसे ये इसलिए पूछ रही हैं कि आप सोचती हैं मैं कमजोर हूँ? सुमित्रा देवी ने चुपचाप सिर झुका लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा, पर जब सब कुछ बिखर रहा हो तो मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या तुम अब भी अखिल के साथ हो या तुम्हारा मन भी दूर जाने लगा है। शालिनी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं चली गई होती आंटी अगर मेरा रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों पर टिका होता। सुमित्रा देवी ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की उम्मीद चमकने लगी थी। मुझे अखिल से प्यार है, शालिनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, और वो कोई आम हल्का फुल्का फिल्मी प्यार नहीं है आंटी, ये वो प्रेम है जो एक इंसान की आत्मा से जुड़ता है, जो उसकी अच्छाइयों में भी साथ देता है और उसके अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। उसका स्वर स्थिर था लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थीं। मैं जानती हूँ, शालिनी आगे बोली, कि उसने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैं उसे सिर्फ उसकी गलतियों से नहीं देख सकती, मैं वो सब भी देखती हूँ जो वो दुनिया को नहीं दिखाता, उसके भीतर का टूटा हुआ बच्चा, उसकी उलझने और वो संघर्ष जो शायद उसने कभी शब्दों में नहीं कहा। सुमित्रा देवी की आंखें नम हो गईं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें उससे इतना गहरा जुड़ाव कैसे हो गया शालिनी, जब वो खुद अपने आप को नहीं समझ पाया तब तुमने कैसे जान लिया कि उसमें अब भी कुछ अच्छा बाकी है?
शालिनी मुस्कुराई, वो एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान थी। क्योंकि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, उसने कहा, तो आप उसे सिर्फ तब नहीं चाहते जब वो परफेक्ट हो, आप उसे तब भी थामते हैं जब वो टूट रहा हो, जब उसकी परछाई भी डराने लगे। वो थोड़ा रुकी, फिर आगे कहा, मैंने अखिल को उसकी खामोशियों में पहचाना है, वो जो नहीं कहता वो मुझे सुनाई देता है, और मैं जानती हूँ चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए वो कभी पूरी तरह बुरा नहीं बन सकता। सुमित्रा देवी की आंखें छलछला गईं, उन्होंने शालिनी का हाथ थामा और भर्राए स्वर में बोली, तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शायद मुझसे भी बड़ा। नहीं आंटी, शालिनी ने धीरे से कहा, माओं का दिल कभी छोटा नहीं होता, आप अखिल से अब भी उतना ही प्यार करती हैं, बस डर आपको उस प्यार से दूर कर रहा है। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं रोज खुद को दोष देती हूँ, उन्होंने कहा, सोचती हूँ कहाँ चूक हुई मुझसे, काश मैं समझ पाती कि कब वो इतना अकेला हो गया। शालिनी ने उनकी हथेली को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। हम सब कहीं ना कहीं चूकते हैं, लेकिन चूक का मतलब ये नहीं होता कि सब खत्म हो गया, अभी भी वक्त है। क्या वो वापस आएगा शालिनी? उनकी आवाज़ कांप गई थी। क्या तुम उसे वापस लाओगी? शालिनी ने एक गहरी नज़र उनकी आंखों में डाली और कहा, वो लौटेगा आंटी, लेकिन तब नहीं जब हम उसे दोष देंगे, बल्कि तब जब हम उसे ये एहसास दिलाएंगे कि हम उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में कुछ क्षणों के लिए नमी और गर्मी का अजीब मिश्रण हो गया। बाहर हवा का झोंका आया और पर्दे हल्के से हिले। वो दृश्य मानो कह रहा था, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। सुमित्रा देवी ने पास रखे अखिल के बचपन की तस्वीर को देखा, कुछ देर तक उसे निहारती रही, फिर शालिनी की ओर मुड़ी और कहा, अगर कभी तुम्हारा भी मन डगमगाए, अगर कभी तुम्हें लगे कि सब थक चुका है, तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। आपके इन शब्दों में ही तो घर बसता है आंटी। फिर वे दोनों खिड़की के पास खड़ी रहीं, दो स्त्रियां, दो पीढ़ियां, लेकिन एक ही धागे से जुड़ी हुई, प्रेम और विश्वास के। थोड़ी देर बाद सुमित्रा देवी ने कहा, कल सुबह पूजा में आ जाना मेरे साथ, मैं अखिल के लिए दीपक जलाऊंगी, शायद हमारी प्रार्थना उसके रास्ते में कुछ रोशनी बन जाए। शालिनी ने सिर झुकाकर कहा, जरूर, हम दोनों मिलकर उसे वापस लाएंगे। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन भीतर उस कमरे में एक नया सवेरा जन्म लेने को तैयार था, रिश्तों की दरारों को भरने की शुरुआत प्रेम की रोशनी से।